इस वक्त आप जो रूपरवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।
खुदावंद आसमानी बाप, तेरे लोग तेरे हुजूर में झुके हैं, तू अपना कलाम नाजिल कर, तू अपने लोगों से बोल, तू हमारी कमजोरियों और खताओं को बख्श दे और अपने बड़े जलाल और इरफान को खुदा खुदा हमारे दरमियान उबेल दे, हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल और तेरी कुदरत और तेरी हशमत और तेरी बुजुर्गी जाहिर होती रहे, मसीह यीशु के नाम में। माल पहला बाप उसकी 14 आयत, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। तो अमाल की किताब लिखने वाला हमें बताता है कि ये सब के सब, ये सारा ग्रुप, चंद औरतें, यीशु की मां मरियम और उसके भाई सब एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। तो आज हम थोड़ी देर के लिए जो बात स्टडी करेंगे खुदा के कलाम में से हुई है, जब पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है, जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आता है और जब हमारी जिंदगियां खुदा के रूह के कंट्रोल में चली जाती हैं, उसका रिजल्ट ये है कि खुदा के लोग दुआ करने वाले लोग बन जाते हैं। खुदा की कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया बन जाते हैं। अगर हम ये चाहते हैं खुदा हमारे दरमियान वैसे ही काम करे जैसे वो अमाल की कलीसिया में करता था, तो हमें आज इस बात की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, अपने चर्च में, अपने घर में खुदा को वही मकाम दें जो पहली कलीसिया खुदा को मकाम देती। जब तक हम खुदा को वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो वर्शिप, वो लव, वो डिग्निटी, वो पहला दर्जा नहीं देंगे जैसे अमाल की कलीसिया खुदा को दर्जा देती थी, तो चर्च में वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो हमें अमाल की किताब में नजर आते हैं। जो चीज खुदा तक पहुंचती है और वो वही चीज जो खुदा तक पहुंचती है वो कुर्बानी है। इसलिए जब बनी इसराइल ने कुर्बानियां शुरू की, खुदा ने उन्हें कहा सेक्रीफाइस के लिए, तो जो पहली आग है मसबा पर जो ले दी गई वो आसमान से है। जमीन की जो आग है ये आसमान तक नहीं पहुंच सकती। जब हम कुर्बानियां खुदा को देते हैं तो खुदा की आग उस पर आती है, वो कुर्बानियां फिर खुदा तक पहुंचती है। तो आज हमें इस बात की जरूरत है कि हमारी जिंदगी के दो एरियाज में, खास तौर पर दो एरियाज में कुर्बानी का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी खुदा तक पहुंचती है। फरिश्ता ने कर्नेलियस से कहा कि तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगिरी के तौर पर खुदावन के हजूर में पहुंची है। योर प्रेयर्स एंड योर गिविंग, योर चैरिटी खुदा के हजूर में मेमोरियल के तौर पर पहुंची। क्या चीजें खुदा ने याद की कर्नेलियस की? दुआएं और देना उसकी गिविंग्स। तो जब पाखरू हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें दुआ करने वाले लोग बना देता है, दुआ करने वाला चर्च बना देता है, दुआ करने वाला खादम बना देता है। तो आज जिस चीज को मैं फोकस करना चाहूंगा वो है सेक्रीफाइस प्रेइंग। वो दुआएं जिन में आपकी कुर्बानियां शामिल हैं, जिनके लिए आप टाइम निकालते हैं, जिनके लिए आप एफर्ट करते हैं, जिनके लिए आप मेहनत करते हैं, वो दुआएं जिनके लिए आप आंसू बहाते हैं, वो खुदा की हजूर में पहुंचते हैं। सुखादम अक्सर इस बात पर स्ट्रेस करते हैं, हमें सेक्रिफिशियल जो हदिया जात है वो खुदा उनको देने चाहिए, ये भी अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन जो मरकजी बात है, जो बुनियादी बात है वो ये है कि दुआ की कुर्बानियां खुदा उनके हजूर में पेश कर। दुआ के हदिये खुदा उनके हजूर में पेश कर, दुआ के लिए मेहनत करें, दुआ के लिए जमा हो, दुआ के लिए एफर्ट करें, दुआ के लिए टाइम निकालें, इबादत के लिए, दुआ के लिए, खुदा के काम के लिए, और कामों को आप ऑर्गेनाइज करें ताकि ये जो काम है आपकी जिंदगी में ये मिस ना हो सके। और ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। जब अमाल की किताब में काम की और लीडरशिप की बात हुई तो रसूलों ने कहा कि काम के लिए इंतजाम के लिए तुम सात डीकन्स को चुन लो, क्योंकि हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में लगे रहे। हम दुआ और कलाम की खिदमत में लगे रहे। दुआ की खिदमत से कलाम की खिदमत जो है वो जन्म लेती है। कलाम की खिदमत पहले नहीं आती है, पहले कौन सी खिदमत आती है? दुआ की खिदमत आती है। 15-20 साल दुआ की खिदमत करें, फिर अपनी जिंदगी में 15-20 साल कलाम की खिदमत करें, फिर आप में से कुछ बनेगा। हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में लगे रहेंगे। इससे पहले कि आप पास्टर हो आप प्रेयर पास्टर बने, इससे पहले कि आप मुबशिर हो आप प्रेयर एवेंजलिस्ट बने। अपनी खिदमत को किस चीज में ले जाएं? दुआ के स्कूल में ले जाएं। बाइबल कॉलेज खत्म करने के बाद मिनिस्ट्री ने शुरू करें, बाइबल कॉलेज खत्म करने के बाद प्रेयर शुरू। अगर आप समझते हैं आपको रसूल की खिदमत मिली है, कोई नबी की खिदमत है, तो कौन से रसूल बने? पहले दुआ के रसूल बने। हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में लगे रहेंगे। कौन से टीचर बने? प्रेयर के टीचर बने, दुआ करें। खुदा मुझे अपने जलाल के लिए ऐसा उस्ताद बना, मुबशर बना, रहनमा बना, नबी बना, रसूल बना कि खुदा मैं तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे खुदा खुदा डिवाइन एट्रीब्यूट्स के मुताबिक तेरे लोगों को तेरा कलाम टीच और प्रीच कर सकूं। आज जिस बेदारी की जरूरत है पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान के चर्च में भी, शिफायती दुआ की बेदारी की जरूरत, हमें अपनी प्राइवेट प्रेयर्स को, शख्सी दुआओं को और हमें क्लीशे दुआ को आज एक बार फिर से इंटेंसिफाई करने की जरूरत है, शिद्दत इन दुआओं में लाने की जरूरत है। और जब आप ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में खुदा के कलाम को देखते हैं, وہ تمام لوگ جن کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، دعا کرنے والے لوگ ہیں، قربانی دینے والے لوگ ہیں، پرستش کرنے والے لوگ ہیں، فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا آج بھی وہی خدا ہے اور خدا آج بھی وہی ریزلٹس پروڈیوس کر سکتا ہے۔ جب پاک روح ہماری دعاؤں میں آ جائے گا تو ہماری دعائیں ایسی ہو جائیں گی جو طوفانی دعائیں ہو جائیں گی، جس کے سبب سے خدا آپ کے پہاڑوں کو میدان کر دے گا۔ آج کیسی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ پری ٹیمز جو دعائیں کر رہی ہیں یہ دعا کریں، خداوند ہمارے چرچ میں، خداوند ہمارے شہر میں دعا کرنے والے لوگ کرے۔ کیا دعائیں کریں آج ہم؟ خداوند ہمیں دعائیں کرنے والے لوگ دے دے۔ دعا کرنے والے لوگ چرچ کے لیے بہترین گفٹ ہیں۔ جو چرچ دعا نہیں کرتے ہیں وہ بیکاری چرچ ہیں، وہ مانگنے والی کلیسیاں ہیں۔ دعائیں کرنے والی کلیسیاں دولت مند کلیسیاں ہیں۔ ہللویہ۔ امریکہ اور یورپ کی کلیسیوں کے دولت کو نہ دیکھیں، ان کی دعاؤں کو دیکھیں جو صدیوں سے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے چرچ میں اس لیے پیسہ کم ہے کیونکہ ہماری زندگی میں دعائیں کم ہیں، ہمارے چرچ میں دعائیں کم ہیں۔ چرچ کی نیڈ پیسہ نہیں، چرچ کی نیڈ دعائیں ہیں۔ آپ کا چرچ جب دعا کے لیے جمع ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ دعا کریں، خدا ہمیں دعا کرنے والے لوگ دے دے۔ دعا کرنے والے لوگ، کلام سنانے والے لوگ خدا کے لیے قیمتی ہیں، لیکن پہلا درجہ کس کا آتا ہے؟ دعا کرنے والے لوگ۔ گیو اس پیپل آف پریئر، گیو اس مین آف پریئر۔ صبح آپ کے چرچ میں پریئر میٹنگ ہوتی ہے، اگر شام کو آپ کے چرچ میں پریئر میٹنگ ہوتی ہے، صرف دو چیزیں خدا سے مانگیں۔ نمبر ون، دعا کرنے والے لوگ دے دے، دعا کرنے والی بہنیں دے دے، دعا کرنے والے بھائی دے دے، دعا کرنے والی فیملیز دے دے۔ ہمیں کیا مانگے خدا سے؟ دعا کرنے والے لوگ دے دے۔ پاکستان میں دعا کرنے والے لوگ ہوں، یہ نہ دعا کرے پاکستان میں بیداری آئی، اور جب دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے خود ہی بیداری آ جائے۔ انڈیا میں دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، ایران میں دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، دبئی میں دعا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ نہ دعا کریں سعودی عربیہ میں کلام کے دروازے کھل جائیں۔ جب دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں، کلام کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہللویہ۔ کیا مانگے؟ ہمیں دعا کرنے والے لوگ دے دے، 15, 20, 10, 50, 100 ہمیں دعا کرنے والے لوگ دے دے۔ دوسری دعا، کیا دعا کریں؟ خداوند ہمیں دعائیں دے دے۔ گیو اس دا پریئرز دیٹ وی نیڈ ٹو پرے، ہمیں خداوند وہ دعائیں دے دے جو ہمیں کرنی ہے۔ گیو اس یور پریئرز دیٹ وی کین پرے، دعائیں دے دے جو ہم دعا کر سکیں۔ یہ نہیں ہمیں، اس کا اردو لینگویج ذرا ڈفرینٹ ہے، اس کا یہ مطلب خداوند ہمیں دعائیں دے دے کہ خداوند تو اوپر سے مالی دعا کرتا ہے، یہ نہیں۔ ہم تو پہلے چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کریں، کوئی ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ دعا کرنی ہے، پادری صاحب نے کرنی ہے، کلام سنانا ہے، پاسٹر صاحب نے سنانا ہے، خود بھی کچھ محنت کرنے ہیں، تو کیا دعا کریں؟ گیو اس یور پریئرز، گیو اس پریئرز آف ہیون، گیو اس ڈیوائن پریئرز، گیو اس ریئل پریئرز، گیو اس انوائنٹڈ پریئرز، گیو اس ہولی اسپرٹ پریئرز، تاکہ جو دعائیں تو چاہتا ہے ہم وہ دعائیں کر سکیں۔ ہر وہ چیز جو آدمی بناتا ہے شیطان اس سے ڈرتا نہیں، وہ آپ کی چرچ بلڈنگ سے نہیں ڈرتا ہے، وہ آپ کی منسٹری سے نہیں ڈرتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ آپ کی منادی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ آپ کے بڑے بڑے لیکچر سے نہیں ڈرتا ہے۔ اینی تھنگ وچ مین میکس ڈیول فیئرز نتھنگ اباؤٹ دیٹ، اسے کوئی ڈر نہیں ان چیزوں کا۔ بٹ ایوری تھنگ وچ گاڈ میکس اٹ میکس ڈیول فیئر فل، شیطان ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو خدا بناتا ہے۔ اگر ہم وہ دعائیں کریں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے، دشمن اس سے خوف زدہ ہوگا۔ اگر ہم وہ منسٹری کریں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے، اگر ہم وہ کتاب لکھیں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے، اگر ہم وہ گیت لکھیں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے، اگر ہم وہ منسٹری کریں گے جو خدا ہمیں دیتا ہے، تو دشمن اس سے ڈرتا ہے۔ ہللویا، وہ آپ کے گیتوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ خدا کے گیتوں سے ڈرتا ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ خدا کی دعاؤں سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پاک روح دیا گیا ہے، روح آنے بھر بھر کر ایسی شفاعت کرتا ہے۔ وہ آپ کے بڑے بڑے ٹائٹل سے نہیں ڈرتا ہے، وہ آپ کی ڈگریوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے ڈرتا ہے جو خدا کے تخت سے آتی ہیں۔ He is very fearful about those prayers. آج چرچ میں ایک ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے، اسٹرانگ پریئرس، پریویلنگ پریئرس، بلیونگ پریئرس، گاڈ موونگ پریئرس، ڈیول راؤٹنگ پریئرس، سنر سیونگ پریئرس، بلیور سینٹیفائنگ پریئرس، کرائسٹ ایکزالٹنگ پریئرس، ورکر پروڈیوسنگ پریئرس، منی فائنڈنگ پریئرس اور ریوائول پریئرس جو آسمان سے پیدا ہوتی ہیں، جب وہ زمین پہ آتی ہیں تو ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ہللویہ، خالی فائر جو پاکستان کی کلیسیاں کر رہی ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ دعا کریں جو کچھ آپ کے اندر ہیں، جو کچھ آپ ہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کی دعا میں لے جائیں اور اسے خدا کی حضور میں آفر کر دیں۔ دعا ایک بہت بڑا، بہت قیمتی پریولیج ہے جو ہمیں صلیب کے سبب سے دیا گیا۔ جب ہم یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں وہ آسمان تک پہنچ۔ دیکھیں، دعا کی میکنزم کو سمجھیں۔ دعا کا اوریجن، دعا کے تھاٹس، دعا کے لفظ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ فادر کا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ۔ دعا کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ پریئر از برڈ ان دا ہارٹ آف دا فادر۔ دعا آپ کے دل سے نہیں نکلتی ہے، سب سے پہلے دعا کہاں سے آتی ہے؟ فرام دا ہارٹ آف دا فادر، خدا کے دل سے نکلتی ہے۔ دعا کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ آسمان پہ پیدا ہوتی ہے۔ دعا کہاں پہ ڈیزائن کی جاتی ہے؟ آسمان پہ کی جاتی ہے۔ جب وہ دعا جو باپ کے دل سے نکلتی ہے اور آپ تک پہنچتی ہے، نکلتی کہاں سے ہے؟ باپ سے۔ اے باپ، مجھے وہ دعائیں دیں جو تیرے دل میں ہیں، مجھے وہ دعائیں دیں جو تیرے ذہن میں ہیں، جو تیرے پلان میں ہیں، جو تیری فیلنگز میں ہیں، جو تیری مرضی میں ہیں۔ وہ کامل دعائیں مجھے دے، وہ آسمانی دعائیں مجھے دے، وہ حقیقی دعائیں مجھے دے، وہ الہی دعائیں مجھے دے، وہ کامل دعائیں مجھے دے جو آسمان پر تیرے دل میں ہیں۔ پھر خدا آپ کو وہ دعائیں دے گا۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، بس یہ پیسے مانگتے رہ جائیں گے، دعائیں مانگ لیں گے بس۔ جب وہ دعا جو آس باپ کے دل میں ہے آپ تک پہنچتی ہے، پھر جب وہ دعا آپ کے اندر آپ نہیں کرتے ہیں، پاک روح کرتا ہے، روح بھی ایسی آئیں بار بار کر دعا کرتا۔ دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ دس از دا سرکل آف پریئر، باپ کے دل سے۔ کہاں پہ پہنچی؟ آپ کے دل میں۔ دعا کی کس نے؟ پاک روح نے۔ پاک روح نے اور آپ نے مل کر جب وہ دعا کی، جب آپ وہ دعائیں کرتے ہیں پاک روح کے ساتھ مل کر، اس لیے ہماری زندگی میں پاک روح کا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ دعائیں جب یسوع کے نام سے واپس باپ تک پہنچتی ہے، ان کا جواب زمین پر ریلیز ہو جاتا ہے۔ ہللویہ، جب ہماری دعاؤں میں یسوع کا نام آتا ہے، when the name of Jesus is in our prayers and the nature of prayer، دعا کی نیچر جب ہماری زندگی میں آتی ہے، what is the nature of prayer؟ the prayers of God، وہ دعائیں جو خدا کے دل سے نکلتی ہیں، وہ دعائیں جو خدا کے تخت سے جاری ہوتی ہیں۔ جب نیم آف گاڈ اینڈ دا نیچر آف گاڈ اینڈ دا نیچر آف دیئر گاڈلی پریئرز ہماری زندگی میں آتی ہیں، پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ دعائیں واپس آسمان تک پہنچتی ہیں۔ दिस इज द सर्कल ऑफ प्रेयर। दुआ शुरू कहां से होती है? बाप से। पहुंचने कहां पर है? आपकी जिंदगी में। आप बाप उनके साथ मिलकर वो दुआ करते हैं, वो यीशु मसीह के पास जाती है क्योंकि उसका नाम बीच में मौजूद है। यीशु मसीह उस प्रेयर को बाप तक फॉरवर्ड करते हैं। जब प्रेयर का ये साइकिल बनता है तो फिर बेदारी का पहिया चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। फिर मुल्कों में बेदारियां शुरू होती हैं, फिर चर्चेस में बेदारियां शुरू होती हैं, फिर मिरेकल जो है वो शुरू होती है। हीलिंग मीटिंग्स, शिफाइया इबादत कभी बेदारी नहीं लाती हैं। हिस्ट्री में कभी बेदारी नहीं आई हीलिंग की वजह से। हमेशा दुआया इबादत, प्रेयर और होलीनेस रिवाइवल को लाई। हिस्ट्री में जब भी बेदारी आई है दुआ की वजह से आई है, पाकीज़गी की वजह से। हालेलुया। अब आपने, चर्च ने, लीडर्स ने, पास्टर्स ने ये फैसला करना है कि वो दुआ के स्कूल में जाएंगे या भी हम मजीद टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। इससे पहले कि दुआ की जाए, प्रेयर मस्ट बी बॉर्न इन हेवन। इससे पहले कि वो जमीन पे की जाए, एनी प्रेयर विच इज नॉट बॉर्न इन हेवन एंड प्रेड ऑन अर्थ इज यूजलेस। इस टाइम वेस्ट में इससे कोई फायदा नहीं। कौन सी दुआ होनी चाहिए? द प्रेयर विच इज बॉर्न इन हेवन, विच इज प्रेड ऑन अर्थ, विच गोज बैक टू हेवन एंड इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट। उससे रिजल्ट पैदा होते हैं, उससे रूहें बचाई जाती हैं, उससे मौजूद होते हैं और फिर इन दुआओं से दुश्मन को शिकस्त मिलती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द व्हील ऑफ प्रेयर। दुआ के पहिए को हमें समझने की जरूरत है और इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी दुआएं हैं और अगर आप ये दुआएं करने वाले हैं जो आसमान से जारी होती हैं, फिर आप जिस चीज को भी छुएंगे उसको बरकत मिलेगी, फिर आपका साया लोगों पर बढ़ेगा, लोग शिफा पाएंगे। हालेलुया। फिर लोग आपके वसीला से जब कलाम सुनेंगे उनकी जिंदगियां आजाद हो जाएंगे। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। गॉड इज वेटिंग फॉर समबडी जो उसकी आवाज सुन सके। खुदा आज मैं क्या दुआएं करूं, मेरी दुआ में क्या होना चाहिए, मुझे दुआ दे दे, मेरे चर्च को दुआ करने वाले लोग दे दे, मेरे मुल्क को दुआ करने वाले खादम दे दे। खुदावंद खुदा हमें अपनी दुआएं दे दे, हमें आसमानी दुआएं दे दे, हमारे कान खोल दे कि हम सुन सकें कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। जब पाकिस्तान का चर्च दुआ के लिए सीरियस हो जाएगा तो आसमान बेदारी भेजने के लिए सीरियस हो जाएगा। आपकी रूहानी जिंदगी के लिए सीरियसनेस कहां से नजर आएगी? आपकी दुआइयां से। चर्च में आने वाले लोग ये शो नहीं करते कि वो रूहानी है, दयायज्ञ देने वाले लोग ये शो नहीं कर सकते हैं कि वो रूहानी है, लेकिन जब आप रोते हैं, आप दुआओं में बैठते हैं, आप घंटों घंटे जब आप दुआएं करते हैं और खुदा को पुकारते हैं, मुझे दुआएं दे दे खुदा, खुदा मुझे अपनी मर्जी मुझ पर जाहिर कर दे, मेरे साथ कम्युनिकेशन कर, मुझसे बोल कि मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, ये आपकी सीरियसनेस शो करती है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को शो करती है। कैसी दुआएं होनी चाहिए चर्च में? और जब ये दुआएं, जो मैं सिंपल तीन बातें आपको बताने लगा हूं, जब ये दुआएं चर्च में शुरू हो जाएंगी, गॉस्पल का काम तेज हो जाएगा। एवेंजलिज्म के जरिए, मीडिया के जरिए, किताबों के जरिए, टेलीविजन के जरिए और मेथड से, टेप्स के जरिए अंजील का काम तेज हो जाएगा। कैसी दुआएं? नंबर वन, when prayers are early, जब आप सुबह सुबह उठ के दुआ करते हैं, When prayers are late, जब आप रात के पिछले पहरों में दुआएं करते हैं, जब एक सीजन आपकी जिंदगी में ऐसा आता है कि आप सुबह के वक्त दुआ करते हैं, अर्ली मॉर्निंग, बल्कि मैं तेन ढूंढा यार मेरे खुदाया, फिर ऐसी दुआएं, ऐसे सीजन आते हैं आपकी जिंदगी में, आप लेट दुआएं करते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात को, सो अर्ली प्रेयर्स, लेट प्रेयर्स और लॉन्ग प्रेयर्स आपकी जिंदगी में, आपके चर्च में, आपके मुल्क में तब्दीली को ले आएंगे, गॉस्पल का काम तेज हो जाएगा। कौन सी दुआएं? नंबर 1, अर्ली प्रेयर्स, नंबर 2, लेट प्रेयर्स, नंबर 3, लॉन्ग प्रेयर्स। ये एक ही दिन में सारी दुआएं नहीं करनी है, कभी आपकी जिंदगी में सीजन आएगा आप सुबह के वक्त बहुत सी दुआएं करेंगे, कभी सीजन आएगा आप रात के पिछले पहरों में आप दुआएं करेंगे, कभी आपकी जिंदगी में आएगा आप पूरा पूरा दिन ही दुआ करते रहेंगे। अगर एक साल पाकिस्तान का चर्च सीरियस प्रेयर्स कर रहे, इस मुल्क में बड़ा चेंज आ सकता है। अगर आप पूरे एक दिन में भी वो दुआ कर सके जो आसमायदा हुई है, वो दुआ अब भी रिजल्ट पैदा करे। क्यों? आज जब हम जबूर पढ़ते हैं, आज जब हम जबूर गाते हैं, इवन जब वो उर्दू में या पंजाबी में बना दिए गए हैं, उनके अंदर स्टिल वही इल्हाम, वही पावर और वही ताजगी है। 2000 सालों के बाद भी, 3000 सालों के बाद भी, आज जब भी आप जबूर गाते हैं, वो एक बार फिर से आपको जिंदगी बख्श देते हैं, वो खुदा के दिल में से। हालेलुया। जो गीत हम लिखते हैं वो टेम्पररी है, कोई 10 साल चलता है, कोई 1 साल चलता है, कोई 2 साल चलता है, उसकी उम्र जो है वो लिमिटेड है, लेकिन जो चीज खुदा के अंदर से निकलती है वो अवधि हो जाती है, वो दुआएं अवधि हो जाते हैं, वो गीत अवधि हो जाते हैं, वो मिनिस्ट्री अवधि हो जाती है, वो गाने, वो काम, वो मिनिस्ट्री, वो जो काम आप करते हैं वो जनरल हो जाता है, वो जनरली में दाखिल हो जाता है जब खुदा का एलिमेंट उसमें दाखिल हो जाता है, जब खुदा की नेचर उसमें दाखिल हो जाती है, जब खुदा की मर्जी उसमें दाखिल हो जाती है। हालेलुया। सिर्फ दुआएं ना करें, वो दुआएं करें जो खुदा से जन्म लेते हैं, जो आसमान से आते हैं। गॉड फादर गॉड गिव मी योर प्रेयर्स। मैं क्या दुआ करूं अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, मैं क्या दुआ करूं? एक घंटा वेट करने के बाद भी अगर एक जुमला आपको मिल जाता है, आपने सब कुछ हासिल कर दिया, आपने बहुत कुछ हासिल कर दिया। लेकिन अगर आपने एक घंटा दुआ कर ली है और सारी अपनी दुआएं आपने कर ली है, आपने कुछ भी नहीं किया। क्यों? ये लिखा है बार बार माल की किताब में कि जिस जगह वो दुआ करने के लिए बैठे थे वो सारी जगह हिल गए और वो सब रूह कुदस से मामूल हो गए। जब वो दुआएं की जाती हैं जो आसमान से आती हैं, तो जमीन की चीजें हिल जाती हैं। सो पॉइंट ये है, आज वो पास्टर कहां पे हैं, वो नबी कहां पे हैं, वो रसूल कहां पे हैं जो वापस चर्च को दुआ में ले जाए, चर्च को जो सड़कों पे ना ले आए, जो चर्च को दुआ में ले जाए। इससे पहले कि आज हम गलियों में मीटिंग करें, आज हम ग्राउंड्स में मीटिंग करें, आज हम बड़े बड़े क्रूसेड करें, आज हम अपने चर्च में लंबी लंबी और छोटी छोटी प्रेयर मीटिंग्स करें, थोड़े लोग हो, फिर अगर थोड़े लोग भी लंबी दुआ करेंगे, आसमानी दुआएं करेंगे, उसके रिजल्ट्स ज्यादा हैं। पेंटिकॉस्ट के तजर्बे के बाद चर्च में अगर कोई चीज कमांडिंग पोजीशन पर है वो दुआ। आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट, अगर चर्च में कोई भी कमांडिंग चीज है तो वो क्या है? That is the power of prayer and that is the position of prayer. आज एक बार फिर से सन 2010 में बाकरू की ये आवाज है, बाकरू की ये पुकार है तमाम कलीसियों के लिए, मेरे लोग दुआ के लिए जमा हो जाए। आज ये बागरू का नरसिंगा है, एक बार फिर से जो कलीसियाओं में फूंका जा रहा है, मेरे लोग दुआ के लिए जमा। सेंटहुड, दुआ के स्कूल में रिफाइंड और प्योरीफाइड की जाती है। अगर आप पाक बनना चाहते हैं, अगर आप मुकद्दस बनना चाहते हैं, तो दुआएं और ज्यादा आपको रिफाइंड और आपको और ज्यादा प्योरीफाइड करती है। आज वो लीडर्स कहां पे हैं जो एक बार फिर से चर्च को ना सिर्फ दुआ के बारे में टीचिंग दें बल्कि उनको दुआ में ले जाएं, जो एक बार फिर से दुआ के एलिमेंट को, दुआ की नीड को, दुआ के पावर को, दुआ की इंपॉर्टेंस को, दुआ की अर्जेंसी को वापस कलीसिया के दिल में ले आए। आज जो भी खादम पाकिस्तान में कलीसिया को एक बार फिर से दुआ में ले आएगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक और मेरी समझ के मुताबिक वो इस मुल्क का सबसे बड़ा खादम, वो इस मुल्क की इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करेगा जो दुआ को वापस चर्च में ले आएगा, जो इस चीज को फिर से कायम कर देगा कि हमें सीरियस प्रेयर्स की जरूरत है, हमें रेगुलर प्रेयर्स की जरूरत है, हमें डेली प्रेयर्स की जरूरत है, बिला नागा दुआ करो, और हमें उन दुआओं की जरूरत है जो आसमान पे जन्म लेते हैं। दुआ करने वाले लीडर्स दुआ करने वाले चर्च पैदा करते हैं। जब पुलपिट पे दुआएं की जाती हैं और जब पुलपिट से दुआएं की जाती हैं, तो कलीसियाएं दुआएं करने वाली कलीसियाएं बन जाती हैं। जब भी चर्च में प्रेयर मीटिंग्स हो, पुलपिट पे खड़े होकर दुआ करो, खुदा हमें इस जगह को अनवाइंट कर, खुदा हमें इस जगह को दुआ से भर दे, दुआ का मस्सा इस जगह पे ठहर जाए, क्योंकि दुआ की जगह से जब कलाम निकलता है तो सदियां बदल जाती है। दुआ की जगह से जब कलाम निकलता है तो मौजज़ात और बेदारियां जन्म लेती हैं। दुआ की जगह सबसे कीमती जगह है, दुआ की जगह सबसे मुकद्दस जगह है। जिस जगह पर बैठ के ईमानदार दुआ करते हैं, ये वो जगह है जहां आसमान और जमीन आपस में आके मिलते हैं और खुदावंद का तख्त जहां पर लग जाता है, जहां भी दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान हाजिर हूं। आज अगर कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं रसूल हूं या मैं नबी हूं चर्च में, या मैं पास्टर हूं या मैं टीचर हूं, जो भी आपकी मिनिस्ट्री है, अगर आप दुआ करने वाले नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं। दुआ के लिए फैसला करें, दुआ के लिए कुर्बानी दें, दुआ के लिए कमिटमेंट करें, दुआ के लिए जमा हो जाएं, दुआ के लिए वक्त निकाल लें, अपनी उस नेमत को चमका दे जो बुजुर्गों के हाथ रखने के वसीला से तुझे मिले। कैसे चमकेगी वो दुआ? जब दुआ में खुदा का हाथ आपकी जिंदगी पर जुम्मिश करेगा तो वो नेमत आपकी जिंदगी में चमकना शुरू हो जाएगी। आज पाकिस्तान के चर्च को और ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, मदद की जरूरत नहीं, आज पाकिस्तान के चर्च को उन चंद लोगों की जरूरत है जो दुआएं कर सके। जो कलीसियाएं दुआ नहीं करती हैं वो बेकारी कलीसियाएं हैं। चर्च का एक ही बिजनेस है कि वो दुआ करे, चर्च की एक ही मिनिस्ट्री है कि वो दुआ करे। पुलपिट पे दुआएं की जाए, मस्बा पे दुआएं की जाए, उस जगह पे दुआएं की जाए जहां से खुदा के कलाम में निकलना है, उस कलाम की जो पावर है, टेनेसिटी है, उसकी जो वॉल्यूम है, उसकी जो थ्रस्ट है, वो चेंज। पाकिस्तान की चर्च की हिस्ट्री में हमेशा उस शख्स को बहुत रुतबा दिया जाएगा जो वापस इस चर्च को दुआ में ले आए। क्यों हम जॉन हाइट को याद करते हैं और उसकी खिदमत को याद करते हैं और उसकी बातों को याद करते हैं? हिस्ट्री ने जॉन हाइट का नाम तब्दील करके क्या रख दिया, प्रेइंग हाइट। जॉन उन्होंने उड़ाई दिया, जॉन कहने की जरूरत नहीं है, जब दुआ का नाम आता है तो जॉन का नाम आ जाता है, हाइट का नाम आ जाता है, प्रेइंग हाइट, दुआ करने वाला जॉन हाइट। हालेलुया। इस एरिया में कभी भी दुश्मन को कामयाब ना होने दे, वो आपको मुश्किलात में उलझा देगा, घर की प्रॉब्लम्स, ये मसले वो मसले, दुआ का टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं जा सकते वो नहीं जा सकते, ये प्रॉब्लम आ गई वो प्रॉब्लम आ गई, एक दो तीन चार पांच छह महीने दुआ की कुर्बानी में चले जाएं और फिर आप देखेंगे आपकी सारी मुश्किलात मौजात में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, कई लोग पूछते हैं मेरी खिदमत क्या है, मेरी खिदमत क्या है, खुदा ने मुझे किस किस लिए बुलाया है, मैं ये फील करता हूं मैं खिदमत करूं, मैं खिदमत करना चाहता हूं। लेट मी टेल देम, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, मेल्स, फीमेल, अगर खुदा ने आपको खिदमत के लिए बुलाया है तो याद रखें सबसे पहले 15-20 साल उसने आपको दुआ की खिदमत के लिए बुलाया। अगर आप सबसे पहले दुआ की खिदमत के लिए नहीं आएंगे तो वो आपके सारे काम को फेल कर देगा, वो फेल होने देगा, वो सारे काम को खत्म होने देगा, वो सारी मिनिस्ट्री को खत्म होने देगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वापस आपको दुआ की तरफ लाना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो आपका काम खत्म करना चाहता है, बल्कि वो ये चाहता है उसका काम शुरू हो जाएगा, जहां पर दुआएं शुरू हो जाएंगी खुदा का काम शुरू हो जाएगा। हालेलुया। दुआ के बगैर इंसान का काम है जो काम भी आप करते हैं, चाहे वो खुदा के लिए कर रहे हैं, चाहे वो खुदा के नाम से कर रहे हैं, जब चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज नॉट गॉड्स वर्क, इट इज मैन्स वर्क। खुदा आज भी जबरदस्त काम करना चाहता है। खुदा एक बार फिर से अपनी पावर और अपनी टेनेसिटी और जो कुछ उसके पास है वो सारी एबिलिटी उंडेल देना चाहता है, अपने चर्च में उंडेल देना चाहता है। लेकिन वो किस चीज की तलाश में है, मुझे कुछ ऐसे लोग मिल जाएं जो रखने में खड़े हो सके। गॉड इज डिपेंडिंग अपॉन यू। आज खुदावंद आप पे डिपेंड कर रहा है, कलाम सुनाने के लिए नहीं। अगर सिर्फ दुनिया की नीक कलाम होता कि कलाम सुनाया जाए तो वो ऊपर से टेप्स रिकॉर्ड करके नीचे भेज सकता था, वो फरिश्तों को भेज सकता था कि वो मुनादी करें, कि वो खुशखबरी सुनाएं, लेकिन फरिश्ते खुशखबरी नहीं सुना सकते हैं क्योंकि फरिश्ते दुआएं नहीं कर सकते। वो दुआएं क्यों नहीं कर सकते हैं, उनको दुआओं की जरूरत नहीं, उनकी जिंदगी में गुनाह नहीं, उनको निजात का एक्सपीरियंस नहीं। दुआ का प्रिविलेज सिर्फ इंसान को दिया गया, दुआ का शर्फ जो है वो इंसान को बख्शा गया। हां, फरिश्ते आपकी दुआओं को ऊपर लेके जा सकते हैं पर आपकी दुआएं कर नहीं सकते। कैदखाना में फरिश्ता आया और उसने रसूलों की जो चेन्स थी, बेड़ियां थी, वो खोल दी। चेन्स, बॉन्डेजेस खोल दी। किसने? फरिश्ते। लेकिन फरिश्ते को भेजा किसने? ईमानदारों की दुआ। कलीसिया जब दुआ कर रही थी, कलीसिया खुदा से मदद मांग रही थी, कलीसिया जब खुदा के आगे झुक जाती है तो आसमान पे वो फरिश्ते जो खुदा के आगे झुके होते हैं वो जमीन पर भेज दिए जाते हैं। हालेलुया। जब जमीन पर झुकने वाले कम हो जाते हैं तो जमीन पर काम करने वाले फरिश्ते कम हो जाते हैं। हालेलुया। Prayer is a very, very serious matter. आज देखिए अमाल पांच बार 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो ये है कि जब खादम दुआएं करते हैं, जब ईमानदार दुआएं करते हैं, جب کلیسیائیں دعائیں کرتی ہیں تو اس سے کیا ریزلٹس پیدا ہوتے ہیں؟ 27 آیت سے پڑھیں،
پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی، اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دینے ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی
بخشے۔ اس پیسن میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ The boldness رسولوں کی زندگیوں میں، خادموں کی زندگیوں میں، وہ دلیری جو دعا کے سبب سے ان کی زندگیوں میں آتی ہے، اور وہ ہاتھوں کے سامنے بھی جب کھڑے ہیں تو وہ دلیری ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم آدمیوں کی بات کو سنیں یا ہم خدا کی بات کو سنیں؟ خدا کی بات کہاں پہ سنی جاتی ہے؟ دعا۔ آئیں ایک اور حوالہ پڑھیں، اعمال 4:27 اور 27 سے 31۔
اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔
ہللویہ۔ اس پیسج میں وہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں جو ابھی آپ اس سارے میسج میں، ساری اسٹڈی میں پہلے دیکھ رہے تھے۔ 29 آیت سے، اور اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری سے سنائیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں چرچ کے لوگ؟ کلیسیا کیا دعا کر رہی ہے؟ خداوند خدا بخش دے کہ ہم تیرے کلام کو کمال دلیری کے ساتھ سنائیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں چرچ میں آج؟ خداوند کلام دلیری کے ساتھ سنائیں۔ آگے 20 میں، اور تو اپنا ہاتھ، دعا کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ خدا اپنا ہاتھ شفا دینے کے لیے آگے بڑھا، اور تیرے پاک آدم یسو نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ شفا کا کام ہوتا ہے، کلام دلیری کے ساتھ جاتا ہے، شفا کا کام ہوتا ہے، معجزے ہوتے ہیں اور عجیب کام ہوتے ہیں۔ کب؟ جب وہ دعائیں کی جاتی ہیں جو آسمان سے آتی ہیں۔ 21 آئے، جب وہ دعا کر چکے جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سنا گئے۔ دعا کے رزلٹ میں کیا ہوا؟ وہ ساری جگہ، وہ سارا مکان جہاں پر وہ تھے وہ ہل گیا۔ یہ کون سی دعائیں ہیں جو خدا کے دل میں سنے گئے؟ کیچ دا پریئرز آف گاڈ، find and look for the prayers which are in heaven. وہ دعائیں کریں جو خدا ہم چاہتا ہے ہم دعا کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ تبدیلی آئے گی جو خدا چاہتا ہے آئے، وہ ریزلٹس آئیں گے جو خدا چاہتا ہے آئے، وہ معجزات ہوں گے، وہ شفائیں ہوں گی، وہ منسٹریز آئیں گی، وہ کام ہوگا جو خدا چاہتا ہے کہ ہو۔ لیکن کنیکشن ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ وہ دعائیں جو آسمان سے نکلتی ہیں ان کا جواب آسمان سے آتا ہے۔ ہللویہ۔ جیسے میری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی، وہ دعائیں، وہ مرضی جو آسمان سے جاری ہوتی ہے وہ زمین پر پوری ہوتی ہے۔ Prayer must be heard in heaven. Already he knows آپ کیا دعائیں کریں، वो आपको दुआएं देना चाहता है, वो आपको बोझ देना चाहता है, वो आपको अपनी अपनी मर्जी की दुआएं देना चाहता है, लेकिन कीमत आपने देनी है, कुर्बानी आपने देनी है कि आप उन दुआओं को खुदा से ले सके। हालेलुया। और आखिरी बात, लीडर्स के लिए, लीडर वो है जो खुदा के लोगों को दुआ में ले जाए। दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल। लोगों को जमा करना, कोई बड़ा चर्च बना लेना, बड़ी बिल्डिंग बना लेना, ये लीडरशिप नहीं है। ये तो कोई बंदा ही बना सकता है। हुकूमत से एड लेके, फंड लेके, कुछ भी करके सब कुछ कर सकता है, लेकिन रूहानी शख्स वो है जो लोगों को दुआ के लिए जमा कर सकता। हालेलुया। स्पिरिचुअल लीडरशिप स्पिरिचुअल कामों से नजर आता है। और सबसे पहला जो स्पिरिचुअल काम है, जो फाउंडेशनल है, जो बुनियादी है, जो पिविटल है, जिसके ऊपर सारे चर्च और सारी मिनिस्ट्री की इमारत है, वो है दुआया जिंदगी। हालेलुया। खादिम की दुआया जिंदगी, शख्सी दुआया जिंदगी, कलीसिया की दुआया जिंदगी, मजमुई इज्तमाई दुआया जिंदगी, ये वो रूहानी जिंदगी है जिसको खुदा आज एक बार फिर से देखना चाहता। गालिबन खुदावंद ने लुदीकिया की कलीसिया से कहा कि तू समझता है कि मैं दौलतमंद हूं, लेकिन तू क्या है? तू, यू आर जस्ट मिसेबल एंड यू आर जस्ट नथिंग। अगर तुम्हारी जिंदगी में ईमान और दुआ की दौलत नहीं है, तो आपकी जिंदगी में कोई भी दौलत नहीं। हालेलुया। खुदा खुदा आप सबको बरकत दे। और आज अभी इससे पहले कि हम इस मैसेज को क्लोज करें, खुदा के सामने एक फैसले को लाए, एक कमिटमेंट को लाए, दुआ के लिए घर में, चर्च में, किस तौर से हम अपनी जिंदगियों को खुदा के जो दुआया मसबा है, एक बार फिर से हम उसके गिर्द ला सके। खुदा ने एक बार फिर से मुझे दुआ करने वाला शख्स बना दे, मुझे दुआ करने वाली बंदी बना दे, मुझे दुआ करने वाला बंदा बना दे, मेरे घर के सारे लोग दुआ करने वाले लोग बन जाए। हालेलुया। मेरे चर्च के सारे लोग दुआ करने वाले लोग बन जाए। खुदा खुदा मेरे मुल्क में, मेरे चर्च में दुआ करने वाले लीडर्स खड़े कर दे। खुदा खुदा मुझे वो दुआएं दे दे जो तू चाहता है हम दुआएं जमीन पर करें। हालेलुया। ये सिंपल सी दुआ की चंद बातें, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां और बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मौजजात और बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज हमारी जिंदगी में ला सकते हैं। हालेलुया। हम भाई यूनुस के साथ मिलकर दुआ करेंगे।
अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें और ये प्रेयर करें अपने लिए, खुदा बाप मुझे अपने दिल की दुआएं करने का फजल दे, खुदावन मुझे नबूवती दुआएं करने का फजल दे। याद रखें, जब आप दुआ करेंगे, आपकी दुआओं से शहर सरफराजी पाएंगे, आपकी दुआओं से आपके घरों में तब्दीली आएगी, आपकी दुआओं से वो जो रिश्ते टूट चुके हैं, खानदानों में जो लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाएगी, आपकी दुआओं से कलाम की बेदारी आएगी। आप दुआ करें, सब अपने होंठों को खोले और खुदा के हुजूर में दुआ करना शुरू करें। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा ने आपको दुआ के लिए बुलाया है, खुदा ने आपको दुआ के लिए खड़ा किया है, खुदा ने आपको मजबूत किया है दुआ के लिए, खुदा ने आपके घुटनों को मजबूत किया दुआ के लिए। रब शमा सीना तंदोर या रब रहिया का सता रब रहिया रसी का लकपी। जब आप दुआ करेंगे, आपके बच्चों की जिंदगियों में, आपके शौहर की जिंदगी में, आपकी बीवी की जिंदगी में, आपके चर्च में तब्दीली आएगी। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, खुदा मुझे दुआ करने वाली बना दे ताकि मैं अपने चर्च के लिए दुआ कर सकूं। खुदा मुझे दुआ के लिए खड़ा कर दे पाकिस्तान में। हालेलुया। नबाहिया का सत्ता शबीना जलजला तंदोरिया हमारा कभी। खुदा आपको खड़ा करना चाहता है। अपना हाथ खुदा के हाथ में दीजिए, अपने आप को खुदा के हाथ में दे दीजिए। खुदा आज हम जिंदगियों पर दुआया मस्सा को चलाते हैं, ये बेदारी ला चर्च में कि तेरे लोग घंटों घंटे दुआ कर सके, रात के पिछले पैरों में दुआएं कर सके, सुबह सवेरे दुआएं कर सके।
जो दुआ करने से पति की कुवत इनको रोक रही है, आज हम उन्हें पीछे हट जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। अपनी सी कुवतों को, जादूगरी की कुवतों को हम पीछे हट जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। खुदावर दुआ की बरकत जिंदगी में आ जाए, घुटनों को मजबूत किया जाए, हाथों को पार किया जाए। आज के बाद तेरे लोगों की जिंदगी में मिले तो उसी बरकत हम चाहते हैं यीशु के नाम, यीशु के नाम। लाती बीमारी छोड़ यीशु के नाम, हत्या की दर्दे, हत्या की कमजोरी, हत्या की बीमारी इनके बदलों से निकल जाए यीशु के नाम, निकल जाए यीशु के नाम। खुदावर हम इन जिंदगियों से शिफा का कलाम करते हैं, तेरी बरकत को इन जिंदगी ऊपर चाहते हैं खुदा, तेरे जलाल को, तेरी कुदरत को इन जिंदगी ऊपर मार देते हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन।
Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। Grace Assemblies of Pakistan रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रहमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाजन और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। Grace Assemblies of Pakistan इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूएकार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए Grace Bible Institute और ख़त व खताबत के जरिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे रابطہ कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान।